नमस्कार भारत, आज है तारीख 23 अप्रैल, दिन सोमवार और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, मीडिया के आगे ना दें गैर जिम्मेदाराना बयान, लेकिन इसका क्या होगा असर?
ये नहीं लगता है कि स्कूल मास्टर के डांटने से जो उदंड बच्चे हैं वो डांटने भर से सुधर जाते हैं। ये एक प्रशिक्षण है जो लंबे समय से लोग हासिल करते हैं।
कांग्रेस पार्टी की लगी मुहर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 2 सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया।
यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री को जिस जगह से उन्होंने पहले चुन के आए थे या अभी जो चामुंडेश्वरी का वो बता रहे थे, उधर जीतने का उनको आत्मविश्वास नहीं है।
और होगी वसतुल्लाह खां की डायरी और साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश सुप्रेती से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से पीछे न हटें। अपनी अमरीका यात्रा से पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू में मैक्रों ने कहा कि वो मानते हैं कि 2015 का ईरान अमरीका समझौता परफेक्ट नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई विकल्प है। ट्रंप ने ईरान के साथ हुए समझौते को दुनिया के कुछ सबसे खराब समझौतों में एक बताया है और अल्टीमेटम देते हुए इसके लिए 12 मई का दिन भी निर्धारित कर दिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका समझौता तोड़ता है तो उनका देश परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जरीफ ने कहा, हर किसी ने अमरीकी प्रशासन को सलाह दी है कि यह समझौता सिर्फ अमरीका और ईरान के बीच नहीं है। अगर अमरीका इस समझौते से पीछे हटता है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये संकेत जाएगा कि अमरीका विश्वसनीय पार्टनर नहीं है। अगर ईरान को समझौते से मिल रहे फायदे बंद होते हैं तो ईरान के लिए इस समझौते में बने रहने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमें एक तरफा समझौता मंजूर नहीं है। ये थे ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के शब्द। अमरीकी राज्य टेनेसी में नैशविले शहर के मेयर डेविड ब्रिले ने कहा है कि राजनेताओं को बंदूक नियंत्रण कानून में सुधार के बारे में सोचना चाहिए और असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों को आम लोगों की पहुंच से दूर किया जाना चाहिए। नैशविले के बाहरी इलाके में रविवार की सुबह एक शख्स ने गोलीबारी कर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। मेयर डेविड ब्रिले ने कहा, मास शूटिंग, घर में गोली चलाने और दुर्घटनावश गोली चलने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हमें बंदूक नियंत्रण कानून में सुधार की जरूरत है। अगर हम इस मामले में एकजुट होते हैं तभी हम जंग के लिए बनाए गए इन हथियारों को देश की सड़कों से हटा सकते हैं। ये थे नैशविले के मेयर डेविड ब्रिले के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने कहा है कि वो पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के पीछे हटने से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए 45 लाख डॉलर यानी लगभग 2900 करोड़ रुपए देंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि काबुल में एक मतदाता पंजीकरण केंद्र पर हुए आत्मघाती हमले से देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। राजधानी काबुल में कल हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। लीबिया की नौसेना ने कहा है कि उसने पश्चिमी शहर सबरत के निकट समंदर से 11 शरणार्थियों के शव बरामद किए हैं। नौसेना का कहना है कि अफ्रीकी देशों से आए इन शरणार्थियों में से 80 को सकुशल बचा लिया गया है। औद्योगिक देशों के समूह G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कनाडा के टोरंटो शहर में हो रही है। बैठक के पहले दिन रूस के सीरिया में दखल और पश्चिमी देशों पर उसके कथित साइबर और फेक न्यूज अटैक के मुद्दों पर चर्चा हुई। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री सर्ज साक्सायन के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। राजधानी एरेवान में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रशासनिक चेतावनियों की परवाह न करते हुए रैलियां की। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के इस्तीफे और प्रदर्शनों के मुख्य आयोजक निकोल पसिनियान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। हाल के दिनों में कई बीजेपी नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो विवादित रहे और अब एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों को यह हिदायत दी है कि वे मीडिया के सामने जरा संभल कर बयान दिया करें ताकि पार्टी की छवि खराब ना हो। प्रधानमंत्री की अपने सांसदों को दी गई इस नसीहत के क्या मायने हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नामो ऐप के जरिए बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ सीधा संवाद किया। लगभग एक घंटे के इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों और विधायकों को कई नसीहतें दीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद और विधायक मीडिया के सामने विवादास्पद बयान देने से बचें जिससे पार्टी की छवि खराब ना हो।
कभी कभी हमारे कार्यकर्ता मीडिया ऐसा करता है, मीडिया वैसा करता है, मीडिया हमारे साथ ना, इस प्रकार की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम ही कुछ गलतियां कर करके मीडिया के लोगों को मसाला दे देते हैं।
प्रधानमंत्री ने विधायकों से मीडिया को मसाला ना देने की बात कही। दरअसल कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बिप्लव देव का ऐसा ही एक विवादास्पद बयान मीडिया की सुर्खियां बना था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट का अस्तित्व महाभारत काल से था। आखिर प्रधानमंत्री के अपने सांसदों और विधायकों से मीडिया के सामने सतर्कता बरतने की बात कितनी महत्वपूर्ण है और उन्हें इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसकी वजह बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कुछ यूं बताते हैं।
जो एंथुजियाज्म में कई लोग आउट ऑफ टर्न बोल देते हैं बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुए या बिना उस इश्यूज की डेप्थ में जाके जो इमीडिएट रिएक्शन हो जाते हैं, कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह उन्होंने एक रिमाइंडर किया कि कई इश्यूज जो है उसको मीडिया आउट ऑफ टर्न भी कोट कर देती है, तो फिर उस लिए जरा संभल के करें, नहीं तो जो डिबेट असली इशू तो कहीं छुप जाते हैं, उनके स्टेटमेंट्स पे डिबेट होने लगता है।
हाल में जम्मू कश्मीर के कठुआ और उन्नाव में हुए कथित बलात्कार की घटनाओं के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी काफी वक्त तक सवाल उठते रहे। अब उनका अपने विधायकों और सांसदों से यह कहना कि वे संवेदनशील मुद्दों पर संभल कर जबान खोलें, आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है, विपक्षी दल कांग्रेस का इस पर क्या विचार है, सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा को।
जो पार्टी एक तरीके से नफरत और नकारात्मक राजनीति करती है वो कब तक एक ढोंग रचाएगी? तो मोदी जी चिंतित हैं क्योंकि अब भारत के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र कैसा है, तो उनको चिंता है क्योंकि अब लोगों में एक तरीके से लोगों को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक पाखंडी पार्टी है।
सोशल मीडिया पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने ट्रोल्स के साथ मौजूद रहते हैं। इन ट्रोल्स का शिकार वे लोग भी होते हैं जो उस राजनीतिक दल की विचारधारा से सहमत नहीं होते। दलित चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी अक्सर सोशल मीडिया के ट्रोल्स का शिकार होते रहे हैं। प्रधानमंत्री के अपने सांसदों विधायकों को दी गई इस नसीहत पर वे कहते हैं,
ये नहीं लगता है कि स्कूल मास्टर के डांटने से जो उदंड बच्चे हैं वो डांटने भर से सुधर जाते हैं। ये एक प्रशिक्षण है जो लंबे समय से लोग हासिल करते हैं और इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी आरएसएस का जो राजनीतिक प्रशिक्षण है उसमें कहीं ना कहीं दोष है और अगर इसको ठीक करना है तो इसको बुनियाद के तौर पर ही ठीक किया जाना चाहिए।
हालांकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों विधायकों को थोड़ा संभल कर बोलने की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही कैबिनेट के मंत्री संतोष गंगवार एक और विवादित बयान दे चुके थे।
इतने बड़े देश में एक दो घटना अगर हो जाए तो केवल उसको ही एक बतंगड़ बनाकर काम किया जाए, ये भी उचित नहीं है।
कठुआ गैंगरेप पर बोलते हुए गंगवार ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में लोगों को बलात्कार की एक या दो घटनाओं को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अभी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के नेता संवेदनशील मुद्दों पर किस तरह के बयान देते हैं या फिर वे पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। नवीन नेगी, बीबीसी, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत। बीजेपी से अब आते हैं कांग्रेस पर, जिसने बीजेपी पर एक बार फिर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इसको लेकर आज संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के जरिए की जाएगी। क्या कुछ होगा कांग्रेस के इस संविधान बचाओ कार्यक्रम में और वो किस तरह इसे देश भर के लोगों से जुड़ेगी, हमारे सहयोगी अनंत प्रकाश ने यही पूछा कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से।
इस कैंपेन के जरिए जो जो हमारे संविधान पे 2014 से हम एक तरह से देख रहे हैं घातक हमला हो रहा है, वो भी ऐसी चुनी हुई सरकार से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी बनकर आई है, संविधान को सबसे बड़ा होली ग्रंथ मानती हुई आई है, और जब से आए हैं तब से जो भी संवैधानिक तौर तरीके हैं और सरकार चलाने का उनका दायित्व बनता है, जुडिशरी को उसका सम्मान देना उनका दायित्व बनता है, एग्जीक्यूटिव को अपना सम्मान देना वो बनता है, वो कहीं भी नहीं कर रहे हैं। तो देश को ये अवगत कराने के लिए, देश के सामने ये मुद्दों को लाने के लिए और देश को एकजुट करने के लिए कि देश का संविधान ही अगर उसके साथ किसी तरीके का वार होता है, द कंट्री एज वी नो इट, इंडिया एज वी नो इट विल नो लॉन्गर बी अ रियलिटी।
तो इस कैंपेन में किस तरह से आप जनता को जोड़ेंगे?
हमारे ये जो कैंपेन होगा वो हर राज्य में होगा, हर क्षेत्र में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ी रैली होगी। उस रैली में सारे बड़े नेता, सारे कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे। दिल्ली में ये रैली होगी, तो उसे हम पूरा एक हफ्ता जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमले हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, और डेमोक्रेसी को जो खतरा आ रहा है और दिख रहा है, वो देश को अवगत कराएंगे। अगर जब जब संविधान पे हमला हुआ है, जिन जिन ने काम किया है उनको उसकी, मैं कहूंगी, एक रिजल्ट भी मिला है, देश की जनता ने उनको नकारा है, फिर देश की जनता का फिर से विश्वास जीत कर हम लोग आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम दूध के धुले हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने में और उसके हिसाब से चलने में, वो नियम कानून पालन करने में अगर किसी ने अपना दायित्व समझा है, जिम्मेदारी समझी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और वो आज जो माहौल बन रहा है, आज हम देख रहे हैं कैसे हमारे सीनियर जजेस भी बाहर आकर बताते हैं कि आज इतिहास हमें गलत मानेगा अगर हम आज हमने अपना मुंह नहीं खोला।
राहुल गांधी जी इस पूरे कैंपेन में कितना पार्टिसिपेट करेंगे?
जो पूरी कैंपेन है ये उन्हीं का आइडिया है, उसी आइडिया को हम आगे लेकर जा रहे हैं, और वो बिल्कुल इस कैंपेन से जुड़े रहेंगे, कैंपेन को आगे से वो लीड करेंगे।
आज से होगी कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
देश के बाद अब रुख करते हैं राज्य का। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के हाईकमांड ने फैसला कर लिया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य की दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। चामुंडेश्वरी से पर्चा दाखिल कर चुके सिद्धारमैया मंगलवार को बादामी सीट से भी पर्चा भरेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के दो सीटों पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को क्या लाभ होगा? बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटका के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं रहा जिसने दो सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा हो। इस लिहाज से सिद्धरामैया ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी पुरानी सीट चामुंडेश्वरी के साथ साथ बागलकोट जिले की बादामी सीट से भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इसके दो कारण हैं। पहला ये कि कांग्रेस हाईकमान को लगा कि बादामी सीट पर बहुत सारे उनके ओबीसी जाति यानी कि कुरबा जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। दूसरा कारण ये है कि उनके चुनाव लड़ने से उसका असर बागलकोट, विजयपुरा और बीदर जैसे जिलों पर पड़ेगा जहां कुरबा जाति के मतदाता बहुत बड़ी संख्या में हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि यह बात फैलेगी कि मुख्यमंत्री खुद उनके इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वमन आचार्य इसको अलग नजरे से देखते हैं।
यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री को जिस जगह से उन्होंने पहले चुन के आए थे या अभी जो चामुंडेश्वरी का वो बता रहे थे, उधर जीतने का उनको आत्मविश्वास नहीं है। इससे पहले कभी भी वो जीते थे तब देवेगौड़ा जी उनके साथ थे और उनका कम्युनिटी भी साथ में था।
सिद्धरामैया को बादामी से सीट देने की घोषणा कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने की थी, और डॉक्टर आचार्य की प्रतिक्रिया का जवाब कांग्रेस के उस नेता ने दिया जो खुद सिद्धरामैया के दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे थे। वो हैं मल्लिकार्जुन खारगे जो कांग्रेस पक्ष के लोकसभा में नेता हैं। उन्होंने कहा, दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है, उस पर प्रतिक्रिया देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दो क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर कर्नाटका पर नजर रखने वाले मदन मोहन का मानना है कि बदामी ऐसा क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री का जीतना उतना आसान नहीं होगा।
इट इज अ पॉलिटिकल गैम्बल दैट सिद्धरामैया इज टेकिंग।
सिद्धरामैया के लिए बदामी सीट एक राजनीतिक जुआ है। वो कभी भी उत्तर कर्नाटक के कुरुबा जाति के नेता नहीं थे। अब जब उनको चामुंडेश्वरी की सीट कमजोर दिखने लगी है, वो बदामी जा रहे हैं। ये थे राजनीतिक विश्लेषक मदन मोहन के शब्द। दरअसल चामुंडेश्वरी में करीब 70,000 वोकलिगा समुदाय के मतदाता हैं, जो जनता दल सेक्युलर को ज्यादातर समर्थन देते हैं, और दूसरे ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन और दलित मतदाता भी हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान को यह लग रहा है कि सिद्धरामैया को एक और सीट से खड़ा करने पर कई सीटों पर सकारात्मक असर होगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
इमरान कुरैशी की रिपोर्ट सुन रहे थे आप। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के पुलिंदे के साथ स्टूडियो में दिनेश उप्रेती पहुंच चुके हैं। क्या कहते हैं आज के अखबार दिनेश जी?
जी शाहिद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इसी हफ्ते होगी मुलाकात, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जनसत्ता की हेडिंग है, बर्फ पिघलाने इसी हफ्ते चीन जाएंगे मोदी, शी से मिलेंगे। इसके अलावा बॉक्स में जनसत्ता ने एक खबर छापी है कि पानी के आंकड़े साझा करने को भी चीन अब तैयार हो गया है। डोकलाम में तनातनी के बाद चीन ने आंकड़े साझा करना बंद कर दिया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस मुठभेड़ में 16 माओवादियों के मारे जाने की खबर भी लगभग सभी अखबारों में है। प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी के सांसदों और विधायकों को विवादित बयान नहीं देने की नसीहत की खबर भी अखबारों में छाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने ईमेल भेजकर बचाए 977 करोड़ रुपए, ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने पोस्टेज की कॉस्ट जो है उसको घटा करके अपने ज़्यादातर काम जो है ईमेल पे फोकस कर दिया है, और पिछले 5 साल में उसने पोस्टेज कॉस्ट में भारी कमी की है।
जी, जैसे कि आजकल हर कोई मतलब इंटरनेट पे ही निर्भर हो चुका है, तो उसी तरीके से
चिट्ठी पत्री का जमाना जरा पुराना हो गया है। महाभियोग पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कानूनविदों की राय ली है, ये खबर भी कई अखबारों में पहले पन्ने पर है।
और मैं देख रहा हूँ दिनेश जी के हिंदुस्तान पे भी खबर है महाभियोग को लेकर के, जो है कांग्रेस जो है वो महाभियोग पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ये हिंदुस्तान पर हेडिंग लगी हुई है इस वक्त
तो। हाँ, और कुछ अखबारों में ये भी है कि उनका कहना है कि क्या ये देखना है, आज सोमवार का दिन है और सीजीआई जो है आज नए केस कुछ लेते हैं अपने हाथों में, या पर फिर वो रोस्टर के रूप में चलेंगे आगे।
जी, रोस्टर पे बहस चल रही है उस रोस्टर को लेके।
जी, दैनिक भास्कर की खबर है, देश के पहले सैनिक स्कूल में 57 साल के इतिहास में पहली बार 15 लड़कियाँ भी पढ़ेंगी। अच्छा। ये सैनिक स्कूल है लखनऊ का, और यहाँ 9वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए लगभग 2500 छात्राओं ने आवेदन दिए थे, जिनमें 15 छात्राओं का चयन किया गया है।
मतलब अब तक नहीं पढ़ती थी।
कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला मार्ग से फिर शुरू होगी, ये खबर है जनसत्ता में। भारत और चीन ने इस पर सहमति जता दी है। करीब 10 महीने पहले डोकलाम में जो विवाद हुआ था उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई।
यात्रा की आपने एक बात कही तो मैं भी देख लेता हूँ। एक छोटी सी एक कॉलम में यहाँ खबर छपी है हिंदुस्तान पे, तो उसमें है कि महरम के बिना हज करेंगी 1308 महिलाएं। मतलब ये एक जो एक कानून था, एक मामला था कि महिलाएं जो है बिना महरम के हज पे नहीं जा सकती हैं, तो उसको लेकर ये है कि अब इस बार जो भारत से महिलाएं जा रही हैं वो 1308 हैं जिनके साथ कोई पुरुष नहीं।
मोदी सरकार ने पिछले साल ये फैसला लिया था। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की खबर भी कई अखबारों में है। पेट्रोल और डीजल, जैसा कि पता ही है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसके बाद से पेट्रोल की कीमतें 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। दिल्ली और एनसीआर में जहां पेट्रोल जो है 74 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उत्पाद शुल्क में जो है कई राज्य सरकारों ने कोई कमी नहीं की है, और अच्छा। इस वजह से जो है वो बढ़ता जा रहा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी अखबारों की समीक्षा के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
श्रोताओं, अब समय है पाकिस्तान से आई उसतुल्लाह खान की डायरी सुनने का।
इन दिनों पाकिस्तान में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट, यानी पश्तून रक्षा आंदोलन, यानी पीटीएम। اس کا جنم کراچی میں ایک قبائلی یوا نقیب اللہ محسود کے پولیس انکاؤنٹر کے بعد شروع ہونے والے آندولن سے ہوا۔ شروع میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایس ایس پی راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے قبائلی لوگوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور پھر اس دھرنے سے ایک 25 کا لڑکا نکلا، منظور پشتین، اور اس کے ساتھ ہو لیے سینکڑوں پشتون عورتیں اور مرد، اور پھر یہ تعداد پہنچ گئی ہزاروں میں، اور پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جگہ جگہ منظور پشتین کو سننے کے لیے بھیڑ اکٹھا ہونی شروع ہو گئی۔ مانگیں بہت ہی سیدھی ہیں، یعنی پچھلے 10 میں آتنکواد کے خلاف جنگ کے دوران جو سینکڑوں پاکستانی شہری غائب ہوئے ہیں انہیں ظاہر کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ افغان سیما سے لگے قبائلی علاقوں میں انگریز دور کا کالا قانون ایف سی آر ختم کر کے وہاں بھی پاکستانی سمویدھان لاگو کر کے وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقوں کو وہی بنیادی حق دیے جائیں جو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ناگرکوں کو حاصل ہیں۔ طالبان کے خلاف فوجی آپریشن میں عام لوگوں کے جو گھر اور کاروبار تباہ ہوئے ان کا معاوضہ دیا جائے، اور ان علاقوں میں چیک پوسٹوں پہ وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ مگر راشٹریہ سنستھاؤں کو شک ہے کہ منظور پشتین اتنا سیدھا نہیں ہے، اس کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔ اس لیے میڈیا کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ منظور پشتین کے جلسوں کی رپورٹنگ نہ کرے۔ جہاں جہاں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے ہوتے ہیں وہاں پہلے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر ہٹا لی جاتی ہیں۔ کل پشتون تحفظ موومنٹ نے لاہور میں جلسہ کیا، پہلے اجازت دی گئی، پھر اجازت واپس لے لی گئی، پھر آندولن کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں پانی چھوڑ دیا گیا، مگر لوگ پھر بھی آئے۔ صرف پشتون نہیں، پنجاب کی سول سوسائٹی بھی منظور پشتین کو سننے آئی۔ میڈیا کوریج نہ ہونے کے باوجود اس آندولن کو سوشل میڈیا کی طاقت اور لائیو سٹریم زندہ رکھے ہوئے ہے۔ طاقت کے بل پہ نمٹنا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ آندولن اب تک شانتی پورن ہے، دوسرے ان کی جو مانگیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سمویدھان یا راشٹر کے قانون سے باہر نہیں۔ لوگ باگ پہلے کی طرح آنکھیں بند کر کے غداری اور دیش دروہ کے آروپ ہضم کرنے کو بھی تیار نہیں، وہ اب سوال کرتے ہیں اور ثبوت مانگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے راجنیتک گٹ بھی کہنے لگے ہیں کہ ان نوجوانوں کو بات کرنے دی جائے، ان کی بات سنی جائے، اس سے پہلے کہ عرب اسپرنگ کی طرح یہ آندولن پاکستانی اسپرنگ میں تبدیل ہو جائے۔ مگر دنیا کا ہر دیش چلانے والوں کی وڈمبنا یہ ہے کہ جو بات عام لوگوں کو سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے راشٹریہ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے آخر میں سمجھ میں آتی ہے، اور جب تک سمجھ میں آتی ہے تب تک وقت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔
وسعت اللہ خان کی ڈائری کیسی لگی ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اور اب ساپتاہک کاریکرم کھیل کھلاڑی، جسے لے کر آئے ہیں آدیش کمار گپت۔
کھیل اور کھلاڑی کاریکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ کل آئی پی ایل میں چنئی سپر کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو اسی کے گھر میں 4 سے مات دی۔ حیدرآباد کے سامنے جیت کے لیے 183 رنوں کا لکشیہ تھا، لیکن وہ 6 وکٹ کھو کر 178 رن ہی بنا سکی۔ کپتان کین ولیمسن نے 84 اور یوسف پٹھان نے 45 رن بنائے۔ اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے امباتی رائیڈو کے 79 اور سریش رینا کے ناباد 54 رنوں کی مدد سے نردھارت 20 اوور میں 3 وکٹ کھو کر 182 رن بنائے۔ آج آئی پی ایل میں دلی ڈیئر ڈیوِلز کا سامنا کنگز 11 پنجاب سے ہوگا۔ اور اب سمیکشا، راشٹر منڈل کھیلوں میں ملی کامیابی کیا اتنی بڑی ہے کہ بھارت اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرے؟ گولڈ میڈلسٹ اینڈ کامن ویلتھ چیمپئن انڈیا، سچ اے ہیپی مومنٹ فار دی ٹیم فرام انڈیا، بگ مومنٹ ہیئر، دی گولڈن مومنٹ۔
पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 26 बार भारत का तिरंगा पदक मंच पर राष्ट्रीय गान के साथ लहराया, जो इस बात का सबूत था कि 26 स्वर्ण पदक भारत के खाते में आ चुके हैं। वैसे तो 20 रजत और 20 कांस्य पदकों के वितरण के समय भी भारत का तिरंगा लहराया। ये पल न सिर्फ खिलाड़ी को रोमांचित करते हैं बल्कि देशवासियों को भी अभिभूत कर जाते हैं। भीतर ही भीतर कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि उसकी झलक आंखों में पानी भरने के साथ ही नजर आने लगती है। तो क्या राष्ट्रमंडल खेलों में मिले 66 पदकों ने भारतीय ओलंपिक संघ में इतना जोश भर दिया कि वो अब साल 2026 के युवा ओलंपिक खेल, 2030 के एशियाई खेल और साल 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दावे कर रही है? और इसी सिलसिले में उसने बीते गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाख और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख अहमद अल सबा से बैठक भी की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हमें मेजबानी मिले या नहीं, हम दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन पिछले रियो ओलंपिक खेलों में महज एक रजत और एक कांस्य पदक जीतने वाले भारत को क्या इतने बड़े खेल मेले की मेजबानी करनी चाहिए? साल 1975 में अपने गोल से भारत को फाइनल जिताने और विश्व चैंपियन बनाने वाले पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार कहते हैं,
मेडल टैली में हम नीचे के दर्जे से हैं। सिर्फ ओलंपिक करा देना, और मैं समझता हूँ जो सिलसिला चल रहा है हिंदुस्तान में इस तरह का, एक हब बन चुका है किसी भी बड़े आइटम को कराने के लिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। जब तक हमारे खिलाड़ी तैयार हों, उसके करीब पहुंचना शुरू करें, तब हम इसकी दावेदारी करें, मेजबानी करें और आयोजन करें तो अच्छा भी लगेगा। हम सिर्फ ताली बजाने के लिए ना बैठे वहाँ देखने जाएं कि हमारी टीम तो नहीं खेल रही, दूसरों के देख के लिए हम ताली बजाएं।
ये सच है कि भारत में आईपीएल से लेकर विश्व हॉकी लीग, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, वर्ल्ड कबड्डी लीग, ढेरों क्रिकेट सीरीज, यहाँ तक के विश्व कप जैसे आयोजन बेहद कामयाबी के साथ आयोजित हुए हैं, लेकिन इनकी तुलना ओलंपिक से नहीं की जा सकती। अरबों खरबों रुपए से तैयार स्टेडियम खेलों के समाप्त होने के बाद कैसे खिलाड़ियों से दूर हो जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण 2010 के बाद दिल्ली के स्टेडियम हैं, जिनका रोजाना का खर्चा तक उठाना ना को चने चबाना है। तो क्या भारत पहले पदक मंच पर पहुंचने वाले खिलाड़ियों को तैयार करे और फिर ओलंपिक खेलों की सोचे? खेल पत्रकार और गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान समीक्षक की भूमिका निभाने वाले अयाज मेमन कहते हैं,
ये जरूर है कि अगर आप ओलंपिक गेम्स इंडिया में रखते हैं तो शोहरत बढ़ जाती है मुल्क की, और एक तरह से युवा पीढ़ी को भी एक प्रेरणा मिलती है अगर ओलंपिक गेम्स इंडिया में हो। लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ओलंपिक गेम्स कर लिए और फिर जो है एथलीट्स के बारे में भूल गए, तो वो तो फिर बिल्कुल फिजूल की बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से यूथ ओलंपिक्स अगर पहले रखे हैं, और जब तक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एथलीट्स में, ताकि आपको कम से कम एक टारगेट बने कि 15, 16 या 20 मेडल्स का 12 साल के अंदर आप प्राप्त कर सके।
छोटे बड़े खेल मेलों में पदक हासिल करते ही खिलाड़ियों पर पैसे की बोछार होना बुरा नहीं है, लेकिन काश कि इसी बोछार की कुछ बूंदे तैयारी की उस जलती रेत पर भी पड़ती जिसमें झुलसकर खिलाड़ी तैयार होते हैं, तो शायद ही किसी को ओलंपिक कराने पर एतराज होता, क्योंकि तब यकीन भी होता कि अब पदक तालिका नीचे से नहीं ऊपर से देखेंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने कल मोंटे कार्लो मास्टर्स का फाइनल जीत लिया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने जापान केई निशिकोरी को मात दी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
भारत में अब से कुछ ही देर में बजेंगे सुबह के साथ, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते से पीछे न हटें। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका समझौता तोड़ता है तो उनका देश परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अमरीकी राज्य टेनेसी के नैशविले शहर के मेयर डेविड ब्रिले ने कहा है कि राजनेताओं को बंदूक नियंत्रण कानून में सुधार के बारे में सोचना चाहिए और असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों को आम लोगों की पहुंच से दूर किया जाना चाहिए। निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने देश में जारी हिंसा खत्म करने की अपील की है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि काबुल में एक मतदाता पंजीकरण केंद्र पर हुए आत्मघाती हमले से देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया रजनीश कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।